गच्छामि तत्र ताहम् गच्छामि तत्र त्राहम् गौरयथा सुतवत्सला गौरयथा सुतवत्सला। हे चतुर्भुज, जहां जहां भागवत की कथा होती है वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूं जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती। श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को कहते हैं, महाभारत में और रामायण में, महाभारत काल में कौरवों का पतन तब शुरू होता है जब धर्मात्मा विदुर का अपमान होता है। धर्मात्मा विदुर, भगवत भक्त विदुर, जब वो घर छोड़ते हैं तभी उस घर का सत्यानाश होना शुरू होता है। और रामायण में जब विभीषण घर छोड़ते हैं, लंका छोड़ते हैं, तब से पतन शुरू होता है। महाभारत में दोनों पक्ष में धर्म भी रहता है अधर्म भी रहता है। युधिष्ठिर पांडव के पास घटोत्कच अधर्म का स्वरूप है और कौरवों के यहां दुर्योधन अधर्म का स्वरूप है। और कौरवों के यहां धर्म का स्वरूप विदुर रहते हैं और पांडवों के यहां धर्म का स्वरूप भगवत भक्त युधिष्ठिर महाराज रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज की पांडव पक्ष में चलती है, धर्म वहां सर्वोपरि है। धर्म की आज्ञा और भाई मानते हैं युधिष्ठिर की आज्ञा। और कौरव पक्ष में विदुर की आज्ञा नहीं मानते, विदुर को दासी पुत्र कह के उसकी अवहेलना करते। धृतराष्ट्र को अशांति हुई, नींद नहीं आ रही है, अपने भाई विदुर को बुलाया, धर्मात्मा भक्त भाई को, कि अब क्या करना चाहिए, मुझे रात नींद तक नहीं आती, क्यों नहीं आती मुझे नींद। विदुर कहते हैं, जो दूसरे का हक हड़प करता है उसकी नींद हराम हो जाती है। तुम्हारे घर में साक्षात कलयुग दुर्योधन आया है, तुम उसका पक्ष ले रहे हो, तुम्हें पांडवों का हक दे देना चाहिए, इससे तुम्हें शांति मिलेगी और व्यवहार में भी तुम्हारा यश रहेगा। दुर्योधन के चक्कर में आकर तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो भैया। इस प्रकार जब विदुर ने धृतराष्ट्र को सीख दी तो सुन रहा था दुर्योधन, दुशासन और उसके साथी आदम के विदुर पर, और इतने आग बबूला हुए, बौखला गए दुर्योधन की। दुर्योधन ने कहा, तुम केवल प्राण लेकर चले जाओ यहां से। आप ध्यान देना, धर्मात्मा में और भक्त में कुछ फर्क है। धर्मात्मा तो धर्म युद्ध करता है लेकिन भक्त युद्ध के पचड़े में भी नहीं पड़ता। जिससे भगवत भाव नष्ट हो वो काम भक्त नहीं चाहता। विदुर जी ने तीर कमान वहीं रख दिया, दुर्योधन को और उसके साथियों को ये न लगे कि जाकर पांडवों पक्ष में मैं युद्ध करूंगा। वे विदुर धर्मात्मा भी थे, भागवत भी थे, भगवत भक्त भी थे। वे तीर्थ यात्रा करने को चले गए और कौरवों का विनाश शुरू हुआ। तीर्थ यात्रा करते करते समय पाकर उनको उद्धव की मुलाकात हुई। महाभारत का युद्ध भी हो गया, भगवान अपनी लीला संकेल रहे थे, भगवान ने सोचा कि ये मेरा जो अद्वैत ज्ञान है, सुख शांति और माधुर्य देने वाला ज्ञान है, इसको कौन संभाले रखेगा, इस ज्ञान की परंपरा को कौन संभालेगा। सब और नजर डालते श्री कृष्ण को ये लगा कि उद्धव ही है जो इस ज्ञान को संभाल रखेंगे, क्योंकि उद्धव जब 5 वर्ष के थे तो उनकी माँ खिलौने देती और कोई खिलौना नहीं लेता, श्री कृष्ण की मूर्ति लेता और ध्यान करता। श्री कृष्ण कहते उद्धव मुझसे कम नहीं है, क्योंकि उद्धव नाक से नहीं गिरा, आंख से नहीं गिरा, कान से नहीं गिरा, त्वचा से नहीं गिरा। कुछ लोग दृश्य देखते बड़े बड़े वायसरा बड़े बड़े साहब होते हैं, लेडी को देखते और आंख से गिर पड़ते हैं। एक तिरछी नजर काफी हो जाती है ललना की, सब कुछ अकल होशियारी धरी रह जाती है। कई लोग आंख से गिरते हैं तो कई नाक से गिरते हैं, परफ्यूम आदि सुगंध आदि से, कई जीभ से गिरते हैं तो कई त्वचा से गिरते हैं, कई काम विकार से गिरते हैं। लेकिन उद्धव 5 वर्ष के थे, माँ कहती बेटा आ जाओ कलेवा करो नाश्ता कर लो, उद्धव कहते कि मैंने अभी पूजा पूर्ण नहीं की, मैंने जप ध्यान अभी पूर्ण नहीं किया, मैं कैसे खाऊंगा, मैं अपना नियम पूरा करूं बाद में आता हूं। उद्धव के जीवन में संयम है, उद्धव के जीवन में दिव्य गुण है। उद्धव वसुदेव के भाई, देव भाग के पुत्र है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वसुदेव के भाई देव भाग के पुत्र हैं उद्धव। उद्धव ने शास्त्रों का ज्ञान बृहस्पति से पाया है, देवताओं के गुरु से पाया है, और उद्धव श्री कृष्ण का तत्वज्ञान पचाने में सक्षम है, क्योंकि उद्धव ने प्रेम शिक्षा गोपियों से पाई। उद्धव श्री कृष्ण के विश्वसनीय है, गोपियों के पास और किसी को नहीं भेजते हैं, अपने प्रिय उद्धव को ही भेजते हैं, और गोपियों को सांत्वना देते। जब विदा ले रहे हैं तो गोपियों ने कहा कि भैया अब हमारी बात भी सुन लो, तुम तो कहते हो कि श्री कृष्ण सर्वत्र है, कण कण में है, तुम ध्यान करो, समाधि करो, मन को सूक्ष्म करो, सूक्ष्मतर करो, सूक्ष्मतम करो, मन में संकल्प विकल्प होते तो ये जगत सत्य दिखता है, और मन के संकल्प विकल्प कम होते तो शांति आनंद आता है, और मन 3 क्षण के लिए निसंकल्प हो तो सारा जगत छू हो जाता है, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। उद्धव तुमने ये जो रीत बताई है वो सब ठीक है योगेश्वरों के लिए, लेकिन हमारा हाल क्या है भैया ये सुन। किसी मुसलमान कवि ने गाया है, ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी अपने बश की नहीं है, यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी अपने बश की नहीं है, ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी अपने बश की नहीं है, यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं है, ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी अपने बश की नहीं है, यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आश की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे उद्धव, यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत नहीं है, ये मोहब्बत की बातें हैं ओ ये प्रेमा भक्ति का रास्ता गजब का है। आपके व्यवहार में प्रेम को मिला दो आपका कार्य बंदगी बन जाएगा। माँ को बालक के लिए प्रेम है, रात भर बीमार बालक रोता है, चीखता है, गंदा करता है, कुछ का कुछ करता है, कोई आकर कह दे कि माई रात भर तेरी नींद खराब कर रहा है, ला तेरे बेटे को मैं अमुक अस्पताल में छोड़कर आ जाऊं भर्ती करके। माँ बोलती है नहीं नहीं, इसकी सेवा मेरा आनंद है, ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मुझे कोई थकान नहीं है, भले उजागरा हो गया है, सुबह को सो लूंगी, दोपहर को सो लूंगी, कसर निकालूं, मेरे लाल को अकेला किसी अस्पताल में भर्ती करो, ना ना ना। जैसे बछड़े के पीछे गाय जाती है, ऐसे बालक के पीछे माँ जाती और भक्त के पीछे भगवान जाता है, ये मोहब्बत है भैया। तप व्रत करके, योग साधना करके अपनी योग्यता बढ़ाकर मुक्ति पाना ये भी मार्ग है, लेकिन भगवान को मोहब्बत करते करते अपने आप को भगवान के साथ तदाकार कर देना ये बड़ा रसमय मार्ग है, रसीला मार्ग है। आप घर काम भी करें अथवा समाज में काम करें, जो काम करते हैं उसका केवल रुख बदल दें, दृष्टि बदल दें बस। अपने कर्म को भक्ति योग बना दें। कबीर जी ताना बुनते हैं लेकिन वो उनके लिए पूजा हो जाती है। मेरा ग्राहक भगवान वस्त्र पहनेगा। गोरा कुम्हार मिट्टी रौंदते हैं और घड़ा बनाते हैं। अनेक रूप में जो मेरा ठाकुर जी है उनको शीतल पानी देने की सेवा करूंगा। मुक्ताबाई आए गए साधुओं के लिए रसोई बनाती है और साधु के रूप में मेरा सच्चिदानंद परमात्मा है। थकान नहीं होती, फरियाद नहीं होती, दुख का एहसास नहीं होता है। जब हम व्यवहार में स्वार्थ डाल देते हैं, व्यवहार में अहम पोषने का विचार डाल देते हैं, अपना बड़प्पन घुसेड़ देते हैं, तब व्यवहार हमारे लिए बंधनकारी हो जाता है। नहीं तो व्यवहार में त्याग, व्यवहार में प्रेम मिला दो तो व्यवहार भी भक्ति का सुख दे देता है, बंदगी दे देता है। यशोदा माँ छाछ बिलोती तो पूजा है, मक्खन रखती तो भी पूजा है, मक्खन देती है तो भी पूजा है, कृष्ण को रस्सी से बांधने की चेष्टा करती वो भी पूजा है, और कृष्ण को डांटते वो भी पूजा है, क्योंकि माँ के हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम है। ऐसे मनुष्य मात्र के अंदर तुम्हारा चैतन्य कृष्ण है, ऐसा सोचकर जो काम करता है उसके लिए सारा काम बंदगी का फल देने वाला हो जाता है। गीता में कहा अनाशिताः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरागनिर चाक्रियः। आसक्ति रहित करने योग्य जो कर्म है वो कर्म करे, फल की आकांक्षा न रखे तो वह सन्यासी है और वही योगी है। हमारे अंदर तीन शक्तियां मौजूद है, करने की शक्ति, मानने की शक्ति और जानने की शक्ति हर मनुष्य के पास है। बच्चा जब थोड़ा सा समझने के लायक होता है पूछता है ये क्या है, सिखाया नहीं जाता है तू पूछ, ये क्या है बेटा चिड़िया है, वो क्या है बोले कौवा है, वो क्या है बोले वो आदमी है, बोले आदमी है, बोले हाँ, वो क्या है बोले वो माई है, माई है। वो माँ से भी पूछता है, बाप की गोद में जाता है तो बाप से भी जानकारी हासिल करता है, बहन की गोद में जाता है तो उससे भी पूछता है, और भैया या भाभी की गोद में जाता है तभी भी पूछता है ये क्या है वो क्या है, क्योंकि जानने की शक्ति मौजूद है। वो जानने की शक्ति मनुष्य के अंदर मौजूद है। हकीकत में जानने की शक्ति का सदुपयोग करे तो वो अपने आप को जान ले, और अपने आप को जान ले तो पूरे विश्व को ठीक से जान लेगा। जैसे चावल की देग के दो दाने ठीक से जान लिया तो और सब दानों को जान लेगा, ठीक ऐसे अपने अंतःकरण में उस सच्चिदानंद स्वरूप को जानने की जो इच्छा छुपी है, ये क्या है वो क्या है तो पूछता है, मैं क्या हूँ वो पूछे उसके पहले ही उसके ऊपर नाम धरा जाता है, तेरा नाम गोबर गणेश है, तेरा नाम मोहन है, तेरा नाम कमला है, तेरा नाम फलाना है, तेरा नाम प्रेम जी है, तेरा नाम नारायण है, तेरा नाम तबलची है। ये नाम जो थोप दिए जाते हैं वास्तविक में हमारे नहीं है, जयराम जी की। ये नाम है हाड मास के शरीर के व्यवहार चलाने के लिए। जन्म के वक्त नाम नहीं था, जन्मने के 6-8 दिन या 21 दिन या 40 दिन के बाद नाम रखा गया। अब मरने के बाद भी वो नाम नहीं रहता, वो नाम वाला शरीर तो जल जाता, लेकिन जन्मने के वक्त भी तुम होते हो। जन्म शरीर जन्मा उसके पहले भी तुम थे, शरीर जन्मा उस वक्त भी तुम हो। और जो नाम रखा, पहु नाम रखा, पहुमल रखा, भाई पहुमल रखा, सेठ पहुमल रखा, और आगे चल के संत पहुमल हुआ। ये जो पहुमल पहुमल मल मल आए, ये नाम तो बदलते गए, लेकिन जिसके ऊपर थोपे गए वो अबदल है। उसको जानने के लिए ही ये जानने की शक्ति मिली थी, लेकिन जो जानने की शक्ति मिली थी वहां जानकारी नहीं की, और जो न भी जानते तो चल जाता, उसी कचरे को भर दिया। ये गुजराती है, ये पंजाबी है, ये मारवाड़ी है, ये मिस्टर कॉल है, ये मिस्टर फलाना है, ये मिस्टर फलाना है। सारा आरोपित आरोपित जाना, जानने की शक्ति का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए बंधन में पड़े। मानने की शक्ति सबके पास है, मानने की शक्ति है और सब मानते रहते, लेकिन अज्ञानियों की बात मान मानकर, संसार की आसक्ति वालों की बात मान मानकर हम भी उस आसक्ति में अपने को धकेल रहे। मानने की शक्ति का अगर हम सदुपयोग करें तो जहां से मानने की शक्ति उत्पन्न होती है उसी सच्चिदानंद कृष्ण तत्व को मानते तो मुक्त हो जाते, आनंद हो जाता। करने की शक्ति, मानने की शक्ति और जानने की शक्ति, करने की शक्ति भी छुपी है सब में, लेकिन वो कर्म करें तो कर्म में प्रीति डाल दें। करने की शक्ति जिसने दिया है उसकी प्रसन्नता के लिए अगर हम करने लग जाए, करने की शक्ति तो है, लेकिन करने की शक्ति जहां से आई है उसकी प्रसन्नता के लिए करें तो हमारा व्यवहार भक्ति बन जाएगा, हमारा व्यवहार सुखद हो जाएगा। लंबी लंबी पूजाएं करो, लंबी लंबी नमाजें पढ़ो, लेकिन इंसान इंसान के लिए अगर वैर है, दुश्मनी है, उसको काटो, उसको कत्ल करो, उसको ये करो, तो तुम्हारी लंबी लंबी नमाजें व्यर्थ है, लंबी लंबी पूजा व्यर्थ है, क्योंकि हर इंसान के अंदर गहराई में छुपा वो ला इल्ला इल्लिल्लाह, वो रम रोम में रमने वाला राम, श्रीमद् भागवत में आता है कि कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं कि जो विस्तार से पूजा करते हैं लेकिन मनुष्य मनुष्य के प्रति नफरत रखते हैं, उनकी पूजा में ग्रहण नहीं करता। जो प्राणियों के भीतर में छुपा हूं उसका तो अनादर करते हैं, और लंबी लंबी जो पूजाएं करते हैं उनकी मैं पूजा सामग्री स्वीकार नहीं करता। शाह हाफिज ने कहा, ए इंसान तू 100 मंदिर तोड़ दे, हे इंसान तू 100 मस्जिद तोड़ दे, लेकिन एक जिंदा दिल मत सताना, क्योंकि खुदा उसमें खुद रहता है। मुसलमान अपने ढंग से संतों फकीरों की और शास्त्रों की बात माने, हिंदू अपने ढंग से माने तो संसार नंदन वन हो जाएगा। पड़ोसी अपने ढंग से माने और हम अपने ढंग से माने तो ये जो हमारा कलह है, अशांति है, स्वार्थ है, एक दूसरे को शोष के नीचों के सुखी होने की जो बेवकूफी है वो संसार से विदा हो जाए। आज मनुष्य आप तो सुख की नींद लेना चाहता है लेकिन दूसरे का शोषण करके, तलवार पर हाथ रखकर या पिस्तौल या बंदूक पर या बम का सहारा लेकर वो सुखी होना चाहता है, लेकिन हिंसा हमेशा डरपोक होती। तुमने देखा सुना होगा, शेर जब जंगल में चलता है तो बार बार मुड़कर देखता है कि मुझे कोई खा तो नहीं जाएगा, अब उस कमबख्त को कौन खा जाएगा, उसने तो हाथी के सिर का खून पिया है, हाथी को मार के खाया, उसको कौन खा जाएगा, लेकिन उसकी हिंसा उसे डराती है। ऐसे ही व्यवहार में जो हम स्वार्थ से लगे हैं, ये नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, करने की शक्ति जिससे किया जाता है उसके लिए नहीं करते और व्यर्थ की आसक्ति के लिए करते हैं, तो करने की शक्ति हमको बांध देती है। जानने की शक्ति है, लेकिन जिससे जानने की शक्ति आती उसको नहीं जानते तो हम जन्म मरण के चक्कर में फंसते हैं। मानने की शक्ति छुपी है, लेकिन जिसको मानना चाहिए उस सत्य स्वरूप अपने आत्मा को नहीं मानते हैं और हाड़ मांस के शरीर को मानते, मैं फलाना भाई हूँ, मैं फलाना माई हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं नौकर हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ, मैं मेंबर हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सारा थोपा हुआ कचरा अपनी खोपड़ी में लेके घूमते, इससे डर लगता है कि अरे कहीं मेरी इज्जत तो नहीं चली जाएगी, कहीं मेरे ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा पद तो नहीं चला जाएगा, कहीं मेरा यश तो नहीं चला जाएगा। तू कितना भी संभाल, जब शरीर नहीं रहेगा तो मिले हुए पद और मिला हुआ मकान दुकान कब तक रहेगा। तू तो वहां नजर रख जिसको काल भी नहीं छू सकता, उस अकाल स्वरूप आत्मा की ओर तू श्रवण कर, उसी का तू सहारा ले, तेरा तो मंगल हो जाएगा, तेरी मीठी निगाह जहां तक पड़ेगी उन लोगों का हृदय भी पावन होने लगेगा। तू वो चीज है मन, तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण, तू ज्योति स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू प्रेम स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू मुक्त स्वरूप है। आटा दाल घी तेल मिर्च मसाले में सारी जिंदगी खपाने के लिए तू नहीं पैदा हुआ है। बड़े शर्म की बात है कि मनुष्य जन्म पाकर भी जो दुखी चिंतित और भयभीत रहे, दुखी चिंतित और भयभीत तो वे रहे जिनके माई बाप मर गए, तेरा माई बाप तो तेरा चैतन्य तेरे साथ है, और जो निगुरे हैं वे दुखी चिंतित भयभीत रहे, तेरे पास तो गुरु का ज्ञान है, जो होगा देखा जाएगा, फिकर फेंक हुए मैं। हरे ओम मां, हरे ओम मां, हरे ओम मां, हरे ओम। तू अपने ज्ञान स्वरूप में, तू अपने आनंद स्वरूप में, तू अपने प्रेम स्वरूप में गोता मारे जा, उसको सदा तू साथ मान। बाहर की तू तू मैं वाहवाही और निंदा, ये इंद्रियों का धोखा है। बाहर का सुख भी धोखा है और बाहर का दुख भी धोखा है, बाहर का धनाढ्य पन्ना होना भी धोखा है, बाहर की गरीबी भी धोखा है। तू सचमुच देखा जाए तो गरीब भी नहीं होता, अमीर भी नहीं होता है, तू मोटा भी नहीं होता है, पतला भी नहीं होता है, मोटा और पतला तेरा चर्बी होता है, तू काला भी नहीं होता, गोरा भी नहीं होता है, काला और गोरा तेरा चमड़ा होता है, तू दुखी भी नहीं होता है, चिंतित भी नहीं होता है, दुख और चिंता तेरे मन में होती है, लेकिन तू इतना भोला महेश हो जाता है कि चमड़े से मिलकर अपने को काला गोरा मानती है। अब गर्मियों में मैं काली हो गई मासी, तू काली नहीं हुई देवी। जाड़े है बाबा जी, आजकल मैं गोरी हो गई मौसी, तू गोरी भी नहीं हुई देवी, तेरा चमड़ा काला गोरा होता है, तू काली गोरी नहीं, तू तो सबको देखने वाली अमर आत्मा है, चैतन्य है, सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। कालापन भी आया और चला गया। मैं जब अफ्रीका से लौटता हूँ तो बोलते बाबा जी काले हो गए, स्वामी जी काले होकर आए, मद्रास से लौटे तो स्वामी जी काले होकर आए, जब मैं लंदन से लौटता हूँ तो बोले स्वामी जी गोरे होकर आए, अमेरिका से लौटता हूँ तो बोलते स्वामी जी मोटे होकर आए, जब हिमालय से एकांत से लौटता हूँ तो बोले स्वामी जी थोड़े दुबले होकर आए, लेकिन मैं स्वामी जी की कसम खा के कहता हूँ जयराम जी की, हम न काले होते हैं, न गोरे होते हैं, न पतले होते हैं, न मोटे होते हैं, हम तो जो हैं इस सबको देखने वाले। ऐसे ही आप भी इनको देखने वाले बनिए, आप दृश्य मत बनिए, आप अपने दृष्टा स्वरूप में, अपने कृष्ण स्वभाव में आइए, अपने आत्म स्वभाव में आइए। जब जब दुख आए तो समझ लेना कि बेवकूफी का फल है। दुख भय और चिंता जब जब आए तब तक पानी के तीन घूंट पीकर पंजों के बल से थोड़ा जंप मारो कि दुख आया है, मेहमान है, जयराम जी की, ये तो मेहमान है। वो मेहमान घर आए तो कुलीन लोग दरवाजा बंद थोड़े करेंगे, आए है तो आए, अतिथि दुख रूपी अतिथि आया है तो आओ, कितने दिन रहता हम भी देखते हैं, आओ भैया। बस ऐसा चिंतन करने मात्र से वो दुख तुम्हारा हंसी में बदल जाएगा, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे ही सुख भी आ जाए तो कह दो कि सुख भैया तू भी आया है। जो आता है वो जाता है, लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों रहता हूं। सुख आता है वो चला जाता है, दुख दे जाता है। दुख आता है वो भी कम वक्त जाता है और सुख दे जाता है। दुख जाता है तो सुख छोड़ जाता है और सुख जाता है तो दुख छोड़ जाता है। एक दुख दिया आप चिपको क्यों? सुख को चिपकना नहीं और दुख से डरना नहीं, तेरे साथ सच्चिदानंद परमात्मा है ये समझ खोना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मता। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, ये आने जाने वालों के साथ जो नहीं जुड़ता है वो मेरे मत में परम योगी है। सब कुछ छोड़ छाड़ के तपस्या करे, निर्विकल्प समाधि लगाए, वो तो योगी है। लेकिन सुख दुख में व्यवहार काल में भी निष्काम भाव से कर्म करता रहे और परिस्थितियों में जो भी चढ़ाव उतार आए उसको आने जाने वाला समझे, वो परम योगी हो जाता है। कितना आसान योग बताते श्री कृष्ण। योग शब्द बहुत जगह पर लगता है। दो औषधि के मेल को आयुर्वेदिक योग बोलता है, दो अंकों के मेल को गणित शास्त्र योग बोलता है, दो व्यक्ति के मिलने को भी योग कह दो। पतंजलि महाराज कहते हैं चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है, लेकिन कृष्ण का योग इन सबसे न्यारा है, सबसे न्यारा है और बहुत प्यारा है। कृष्ण कहते हैं कि सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, उनके साथ जुड़े नहीं, वो मेरे मत में परम योगी है। कितना आसान है ये परम योगी की यात्रा। आप दुकान पे बैठकर भी कर सकते, घर में भी कर सकते, आगरे की बाजार बस्ती में भी कर सकते और दिल्ली के चांदनी चौक में भी कर सकते। जो कार्य करते समय बोझा लगता है या थकान होती है और मुसीबत जैसा लगता है तो समझो उस काम में आपकी प्रीति नहीं है, आप प्रेमास्पद के लिए नहीं कर रहे। कार्य कोई बुरा नहीं होता है, छोटा कार्य जिसको बोलते वो छोटा नहीं है। मोची या चमार भाई चमड़े को संवारते सुधारते और जूते बनाते, ये भी एक प्रभु की पूजा है, ये भी बढ़िया काम है, कोई घटिया नहीं। कोई झाड़ू लगाता है वो भी बढ़िया काम है। भारतीय संस्कृति ने तो अपने कार्य के साधनों का पूजन किया है। झाड़ू लगाती माइयां देवियां घर में, झाड़ू को पैर नहीं लगाना है, उठा के रखो। योद्धा जिन अस्त्र शस्त्र से युद्ध करता है उसका पूजन करता है। मोची जिन साधनों से जूते बूते बनाता है उन साधनों का भी आदर करके उनको ठीक जगह पे रखता है। माई अपना वेलन, अपना वो आटा गूंदने का थाल या अपनी सामग्री उसको ठीक ठाक साफ सुथरा करके रखती है, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे पूजा के साधन है। शबरी भीलन झाड़ू लगाती वो पूजा हो सकती है, तो तुम्हारा घर में या दुकान में या ऑफिस में काम करना ये ईश्वर की पूजा क्यों नहीं हो सकता है? केवल निमित्त ईश्वर बना दो। जो भाई बहन बेटों को स्नान कराते, खिलाते पिलाते, पढ़ाते हैं वो ईश्वर के निमित्त पढ़ाए लिखाए तो ठीक है, लेकिन बेटा बड़ा होगा सुख देगा, लाड़ी बड़ी, बेटा बड़ा होगा लाड़ी लाएगा, छोरी बड़ी होगी शादी करेगी, जमाई रह जाएंगे, मैं सुख भोगूंगी। जब सुख भोगने की वासना से किया जाता है तो बंधन हो जाता है, और सुख देने की या अपना कर्तव्य पालकर परमात्मा को संतोष करने की जब भावना से किया जाता है तो वही काम मुक्ति हो जाता है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। आसक्ति रहित ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा तो इधर क्या अंधेर है? जिस नर्स को हॉबी है, शौक है मरीजों की सेवा करने की, वो नर्स सेवा करती और विचित्र स्वभाव वाले मरीजों के साथ वो रहते हुए भी आनंद में रहती। और जिसको हॉबी नहीं है, शौक नहीं है, वो तो अपने घर के किसी पति या अपने पुत्र या परिवार को भी थोड़ा सा सेवा करती है तो सिर पीटती कि हाय रे हाय, कैसे तुम बीमार पड़ गए, मैं तो मर गई, फिल्म में जाना था, ये भाई साहब बीमार पड़े, हूं हूं कर रही। किसी मास्टर ने लड़की को कहा कि तुम अगर इतना लेट आई तो एग्जाम कैसे देगी, फेल हो जाएगी। लड़की ने कहा साहब मेरा छोटा भैया बीमार था और माँ व्यस्त थी, इसलिए मैं मेरे भैया की सेवा में रही। बोले भैया की सेवा, भैया की सेवा है, अब पेपर में नापास होगी तो। अब उस मास्टर साहब को अकल कौन दे कि सचमुच में तो पेपर में पास हो चाहे न हो, लेकिन व्यवहार में तो वो पास हो गई कि भैया रूपी भगवान की सेवा कर रही है, माता रूपी भगवती को सहयोग कर रही है, इसी का नाम तो दिशा है।